نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير ریڈ سگنلز ان دا وے ٹو سکسیس کامیابی کے راستے کی رکاوٹیں آج ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ کامیابی ہوتی کیا ہے تو ظاہر ہے کہ دو طرح کی کامیابیاں ہیں ایک کامیابی ہے بینگ اے ہیومن کامیاب انسان ہونے کے ناطے کامیابی کا معیار کیا ہے اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دو ہی روپ ہیں نا پہلا انداز کیا ہے کہ ہم لوگ مسلمان جب ہوتے ہیں تو ہماری کامیابی کا معیار محدود نہیں رہتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے بھی آگے جا کر آگے جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الآخرتی حسنتم و قنا عذاب النار ہم صبح شام یہ دعائیں مانگتے ہیں سبھی کو مجھے لگتا ہے یاد بھی ہوگی اور اکثر لوگ نماز میں بھی مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسن نہ دے اور آخرت میں بھی حسن نہ دے کامیابی دے تو مسلمان کے لیے کامیابی ادھوری چیز نہیں ہے اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ عام انسان ماشاءاللہ ہم سب انسان ہیں یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار انسان کو مخاطب کیا ہے او مین کائنڈ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی مذہب پہ ہے وہ کسی طور پہ اپنے آپ کو کہے لیکن بچے کے پیدا ہونے سے لے کے 70-80-90 سال کی زندگی جانے تک ہر انسان بہت ساری کامیابیاں لیتا ہے نا آپ اس میں ریلیجن کو الگ کر دیں اگر بینگ اے ہیومن ایوری باڈی وانٹ ٹو بی سکسیزفل وہ کامیابیاں بھی اچھی ہیں وہ بھی ضروری ہیں ماشاء اللہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ پورا بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 90s یا 100s تک ایون کچھ ملک اس میں 100 بھی لائف اسپین ہے تو وہاں کامیابی کی ایک دوڑ ہے اور وہ کیا ہے کہ بچہ ہے پھر بڑا ہو جائے پھر پڑھ لے اسکول سے کالج کالج سے یونیورسٹی پھر وہاں سے کیریئر مل جائے پھر اس کے بعد شادی ہو جائے بچے ہوں ایک نارمل چیز ہے اسلام نے کامیابی کے اسپیکٹرم کو کہہ لیجئے اتنا وائڈ کر دیا ذرا سا سوچیے گا میں ایک بڑی تکلیف والی بات کہنے لگی ہوں ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر 20 سال کی عمر تک پہنچنے میں مثال لے لیجئے کہ ڈاکٹر بنتا ہے حالانکہ 20 سال تک ڈاکٹر نہیں بن پاتا 25 سال لگ ہی جاتے ہیں آج وہ میڈیکل کی سند لے کر آتا ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ختم اچانک کوئی بھی آفت آ سکتی خود ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا پاسیبل ہے نا ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ 25 سال کی کوشش اور اس کے اندر جو پایا وہ کدھر گیا یہ ہے وہ سوال جو ایک مسلمان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ پھر حاصل کیا ہے ہم صبح شام جس لائف سٹائل میں چلتے ہیں جو ایک بچے سے بڑے ہونے کے سٹیپس ہیں یہ تو بڑے رسکی ہیں بہت رسکی ہے کہ آپ ادھر کامیاب ہوئے اگلے دن آپ دنیا سے چلے گئے اور اگر اس کو یہ بھی سوچ لیجیے کہ دنیا سے نہیں گئے ایک بچی 25 سال کی عمر تک پڑھ کے ڈاکٹر بنی اب جب وہ ڈاکٹر بنتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پڑھا محنت کی ماں باپ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی ہو رہی ہے اس کی جلدی سے شادی کر دو جب شادی ہوئی سسرال کا ماحول ڈفرینٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جاب نہیں کروانی اللہ نے امید دی بیبی ہونے لگ گیا وہ شادی کے 4-5 سال تک اتنا بزی رہتی ہے کہ وہ جاب ہی نہیں کرتی تو وہ میڈیکل کا سارا پروفیشن اس کی کاپیوں اور اس کی کتابوں میں چلا گیا نا تو پھر اس نے 25 سال کس چیز پہ لگائے اور آج 80% شاید ہمارے دیسی کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے کچھ اور ہیں اور بعد میں بنتے کچھ اور ہیں ٹھیک ہے تو دیٹ لیڈس ٹو یہ ہمیں ایک ایسی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسی کامیابی ڈھونڈنی ہے جو رسک فری ہو جو جہاں گھڑی رک جائے کم از کم پچھلا تو محفوظ ہو جائے نا دیکھیے سمجھیے لیپ ٹاپ ہے اس میں الحمدللہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں بس آپ دیکھیے کہ اگر اس وقت میں دیکھوں تو میری اسکرین پہ ریکارڈنگ کا ایک ایک لفظ چل رہا ہے سانس کی آواز بھی آئے گی میری آپ کی کسی کی وسپر بھی آئے گی اللہ نہ کرے کمپیوٹر ہینگ ہو جائے بیٹری ڈاؤن ہو جائے یا کوئی بھی ریزن ہو جب دوبارہ کمپیوٹر کو کھولیں گے نا سب ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا فار سم ریزنس کدھر گئی وہ ریکارڈنگ وہ سب ضائع ہو گیا آخری مومنٹ پہ اگر ایسا ہو جائے تو پورے لیکچر کی ریکارڈنگ ضائع ہو گئی نا بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ہم زندگی میں ایسی چیزوں کے رسک کو ختم کرنے کے لیے سائنٹیفکلی بہت سارے سلیوشنز ڈھونڈتے ہیں میرے آپ کے سامنے ایک سلیوشن ہے کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی آپ کے بچوں کی آپ کے بیٹوں کی بیٹیوں کی اور سب ہمارے پوتے نواسے جو بھی ہمارے آگے آگے آئیں گے لوگ وہ ان کی کامیابی سیکیور ہو جائے تو اللہ نے اس کو کہا قد افلح المؤمنون سورۃ مومنون کی پہلی آیت ہے और यही आप सूरत बकरा खोल लीजिए तो जो पहले हिदायत के एतबार से लोग हैं उनके एंड पे के उलाए का हुमुल मुफलिहून, तो लफ्ज मुफलिह फलाहा, ये अगर आप लफ्ज अपनी डिक्शनरी में लिख लेना तो ये है वो रिस्क फ्री सक्सेस। किसी भी लम्हे आप गए, 25 साल नहीं, 20 साल, 22 साल, 23 साल, जिंदगी के किसी मोड़ पे भी घड़ी रुक गई जिंदगी की और आगे जाना पड़ा तो पिछला जाया नहीं होता और आगे भी है। तो फलाह क्या होती है? मुकम्मल कामयाबी, अधूरी नहीं, कंप्लीट सक्सेस। कामयाबी के लिए अरबी में बहुत से लफ्ज़ में भी हम में से किसी का नाम फौजिया हो सकता है, फायजा नाम बहुत आम है, फायज बड़ा आम मशहूर नाम है, इन सब के अंदर भी कामयाबी है। लेकिन वो कौन सी कामयाबी है? अधूरी। लफ्ज़ फलाह, मुफलिह, मुफलिहा बड़ा प्यारा नाम है अगर आप किसी का रखें, मुफलिह बहुत प्यारा है, ये कौन सी कामयाबी होती है? पूरी कामयाबी। यानी किसान को मुफलिह कहते हैं अरबी में, क्यों भला? बीज डालता है और उसके बाद फसल काट के अपने घर ले जाता है, तो वो कह लीजिए कि रूट टू फ्रूट तक उसकी कामयाबी उसके हाथ में आती है। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी का जो मेयार दिया है वो क्या है? कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले ही कामयाब होते हैं। ये आयत कुरान में बिल्कुल 18 पारे की पहली आयत है और लफ्ज़ फलाह डालकर कुरान पाक में ढूंढ लीजिए, आपको इसका ये भी पता चल जाएगा कि ये कितनी जगह और कहाँ आया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा कुरान के साथ गहरा ताल्लुक होता है तो हम इसको सिर्फ कुरान पाक मिल गया खोल के पढ़ लिया, कहीं गए सपारा मिल गया तो वो सपारा पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, जो मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कर रही हूँ, मैं लफ्ज़ फलाह का आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपका दिल चाहता है कि कुरान पाक में ये कामयाबी जो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है ये कितनी जगह है, तो अभी आपको ना भी समझ आए लेकिन कम से कम बाद में आप कोशिश करेंगे तो आपको ढूंढनी आ जाएगी। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की एक एक चीज़ का पता होता है किधर, ये अलग बात है, कुछ को अपने घर की चीज़ों का भी नहीं पता होता। माशाल्लाह हमने इतना कुछ अपने घरों में रखा होता है कि एंड टाइम पे कहते हैं कौन ढूंढे, जाओ बाजार से ही ले आओ, फिर बाद में देखें जिस दिन सफाई कभी सालाना या हफ्तावार की जाए तो उसमें बहुत कुछ निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को रख के भी भूले होते हैं। ये देखिए, अब ये मैं सिर्फ एक एक्टिविटी सोच के साथ के हमारे पास स्क्रीन है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लफ्ज़ फलाह को अगर मैंने सर्च किया तो कुरान पाक में ये 40 टाइम्स आया, डिफरेंट एंगल से है, कहीं मुफलिहून है, कहीं तुफलिहून है, कहीं अलमुफलिहून है। तो क्या पता चला कि कुरान पाक में जिस कामयाबी का जिक्र कह लीजिए कि 40 टाइम आया है तो यकीनन ये कोई बड़ी चीज़ होगी। ये क्या होती है? पहली बात तो देखिए, ईमान वाले मोमिन है, कद अफलहल मोमिनून, बेशक फलाह पा गए ईमान वाले। मोमिन कौन होता है? खुद से पूछिए। अब हम इस वक्त कोई फिक की बात नहीं कर रहे, हम कोई इस वक्त कह लीजिए कि हलाल हराम पे नहीं है, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या मैं कामयाब हूँ कि नहीं। तो मोमिन वो होता है जिसका दिल मुतमईन हो, जिसके दिल में अमन हो, पीस हो, जिसका जाहिर और बातिन पाक हो। अगर आप अपने जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और पाएं तो इसको इस्लाम ने निफाक कहा, वो मुनाफिक होता है। और मुनाफिक वो होता है जो जाहरी हाल हुलिये का तो ख्याल रखता है लेकिन उसका दिल पाक नहीं होता। तो पहली बात अभी हमने ये समझ ली अभी इतनी बात में कि कामयाब वो है नंबर एक जो सेटिस्फाइड है, हालात कुछ भी हैं, जंग में है, कोरोना वायरस है, ब्लैक आउट है, कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन है, उसका दिल मुतमईन होता है। और आप और मैं अपने आप को साथ साथ टैली कर सकते हैं कि मैं मुतमईन हूँ कि नहीं, मेरे अंदर इत्मीनान है कि नहीं, फिर क्या मेरा जाहिर और बातिन पाक है। मैं जाहिरी दूसरों के सामने जब होती हूँ तो मैं किस तरह दिखती हूँ लेकिन मेरे अंदर की जो ख्यालात हैं, जो चीज़ें वो कैसी हैं। तो क्या पता चला कि ये आपके मेरे लिए क्राइटेरियन है जो हमें समझ आ गई। हम में से हर एक चाहता है ना कि मुतमईन हो, हमारी ज़िंदगी बहुत कामयाब गुजरे। सवाल यह है कि फिर इस कामयाबी, अब इस वक्त मैंने क्राइटेरियन आपके लिए इसी को बनाया है कि आप और मैं ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पीस, सुकून, खुशी, कौन नहीं चाहता? बच्चे से भी पूछ लीजिए तो वो भी यही चाहता है। अब आज की इस पूरी टॉक में हम लफ्ज़ सुकून लेते हैं, खुश, इसको आप खुशी कह लें, सुकून कह लें, पीस कह लें, इनर सेटिस्फेक्शन कह लें, डोंट वरी, जो भी कह लीजिए। तो फिर आप सब सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, जितने लोग हमारे साथ सुन रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त सब सोचें, क्या मैं कामयाब इंसान हूँ? क्या बींग अ ह्यूमन मैं अपने आप को सेटिस्फाइड सोचती हूँ? इस पे आके गड़बड़ शुरू हो जाती है। चाहते तो हम सभी हैं लेकिन 100% कम होते हैं, कोई 90, कोई 80, कोई 70। तो अगर हम इसको इस्लामिकली देखें, क्या प्रॉस्पेक्टस, इस वक्त इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको आज सोच का सफर सिखाना है। लिख लीजिए कि आज की इस पूरी टॉक के बाद आप इस बात पे इंशाल्लाह मुतमईन हो जाएंगे कि आपको अपनी थॉट्स, اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، اس کے بعد آپ خوش ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ لیجیے کنویں میں ڈال دیے گئے، سب کو آتا ہے نا قصہ، وہ جیل میں ڈال دیے گئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے. جا کر کھول لیجیے، وہ وہاں بھی مطمئن تھے، وہ جیل میں بھی خوش تھے، وہ وہاں بھی یہاں بھی، جتنے نام لیے ہیں. تو دیٹ مین کوئی کامن چیز تھی سب کے بیچ میں. تو پتہ کیا چلا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کے حالات میں خوش ہوتا ہے. صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ جنگوں میں گئے ہوتے، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، زخم ہیں، لیکن چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اور ایک تو ایسی جنگ بھی آئی کہ جس میں سونے لگ گئے. اللہ نے کہا سو جاؤ، ٹیک اے نیپ، جس کو جیٹ نیپ کہتے ہیں نا. کبھی کبھی بیٹھے ہیں گاڑی میں، اب سفر کریں، اب تھوڑا سا نیپ لے لیتے ہیں، اس میں انسان فریش ہو جاتا ہے، کیلولا کہہ لیجئے. ہاں تو صحابہ کرام جنگ میں لڑتے ہوئے سو رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنے پیارے گھروں میں، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اتنی اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن ہم مطمئن نہیں؟ دیٹ مینس سم تھنگ از مسنگ. تو اسلام نے جو کامیابی کہی ہے، اس کے رستے کی رکاوٹوں میں دیکھے سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس. ہم عموماً اپنی ناکامیوں کی تلوار کہہ لیجئے دوسروں کے کندھے پہ رکھتے ہیں. فلاں ہے نا، اس نے مجھے آج تک کامیاب نہیں ہونے دیا، فلاں فلاں. سب سے بڑا، یعنی آج یہ جو ریڈ سگنلز کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہمارا سب سے بڑا کامیابیوں کے رستے میں ریڈ سگنل. ریڈ سگنل کیا ہے آج کی ٹاک میں؟ روکنے والا، سٹاپر، جو آپ کو روکتا ہے. آپ جا رہے ہیں ایک دم روڈ پہ، جو کانسٹیبل ہے یا آٹومیشن ہے، ریڈ لائٹ ہوتی ہے، آپ رک جاتے ہیں. آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے، آپ کی فلائٹ مس ہو رہی ہے، دے ڈونٹ مائنڈ، دے ڈونٹ کیئر. ایمبولینس کو بھی ہو سکتا ہے وہاں رکنا ہی پڑتا ہوگا. تو کیا آپ کی ناکامیوں میں یا آپ کے کامیابیوں کی طرف جانے میں آپ کا اپنا نفس سب سے پہلے آپ خود ہیں؟ یقین کیجئے، اگر میں آج تک کچھ نہیں بنی تو اس کی وجہ سب سے بڑی میں ہوں. آج تک مجھے کچھ چیز نہیں ملی یا ملی اور میں نے اس کو اپنی نفس سمجھی کی وجہ سے کھو دیا. آگے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پروسیس بتاؤں گی کیسے. یعنی نفس کو قابو میں رکھیے. اور حقیقت ہے کہ نفس یہ وما ابری نفس ان نفس الامارہ بالسوء. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت 52 یا 53 ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا، واقعی نفس برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کال اگر لے لیا جائے تو بات تو سچ ہے. ہمارا نفس سہل پسند ہے، نفس موٹا ہے، نفس یہ چاہتا ہے. اور نفس کو جو چیز لیڈ کر رہی ہے نا، وہ اگلی ہے، وہ ہے خواہش نفس. آپ نے اگر نفس کے گھوڑے کو لگام ڈالنی ہے نا، تو وہ آپ لگائیں گے اس کے اوپر کہ خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا. اس پہ ایک بڑی پیاری مثال ہے، اس کے اوپر پورا لیکچر بھی ہے تزکیہ نفس پہ، اور بے شمار دفعہ نفس اور تھری کنڈیشنز آف نفس پہ بات ہوئی ہے. یہاں وہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے ایک بگی ہوتی ہے. شاید آپ نے کبھی کراچی میں سفر کیا ہو ادھر ادھر، تو بگیاں چلتی ہیں، کبھی شاہی قسم کی، دو گھوڑے ہوتے ہیں. ٹانگے اور بگی میں فرق گھوڑے کا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے اس میں، ایک نہیں ہوتا. اب آپ امیجینیشن میں لائیے کہ ایک ایسی بگی ہے کہ جس میں ایک سفید گھوڑا لگا ہوا اور ایک کالا لگا ہوا ہے، اور پیچھے جو چلانے والا ہے اس نے دونوں کو چلانا ہے. جو سفید گھوڑا نا، وہ اڑنا چاہتا ہے، وہ ایک اس کہہ لیجیے ملکوتی سا ہے، فرشتہ ہے، وہ اڑنا چاہتا ہے. وہ جو کالا گھوڑا ہے وہ زمین پہ بیٹھنا چاہتا ہے. اب اس بگی کو چلانے والے کو کیا کرنا پڑے گا کہ دونوں کو بیلنس رکھنا ہے. وہ اڑنا چاہتا ہے، یہ دبنا چاہتا ہے، دونوں سیدھے چلتے جائیں گے تو وہ پہنچ جائے گا. اگر وہ ایک گھوڑے کو اتار دے، یا تو وہ اڑ جائے گا یا زمین پہ رہ جائے گا. ہمارا نفس بھی اصل میں ایسا ہی ہے. دو قسم کی کیفیات ہمارے جسم میں آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ کچھ نہیں دنیا میں، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ پہنو، نہ اوڑھو، نہ کسی کو ملو، نہ کچھ. اور دوسری یہ ہے کہ صرف اسی کو زندگی بنا لو. دونوں ہی غلط ہیں. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہشیں بھی پوری کرنی ہیں، لیکن وہ خواہشیں جو ہمیں مقصد سے روک دیں، یا وہ خواہشیں جو کامیابیوں سے نکل کر ناکامیوں کی طرف لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ لے جائیں، اس کو روکنا ہے. تیسری چیز دیکھیے، شیطان ہے، جس کو ہم سب سے پہلی کہتے ہیں. شیطان بھی بیچارہ اتنا بدنام ہے کہ ہم اپنے نفس کے کیے ہوئے گناہ بھی شیطان کے نام کا لگا کے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ شیطان ہے جو مجھے غلط کام کرنے پر لگاتا ہے. تو سورۃ ابراہیم کھول لیں، قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان بولے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو. کیا پتہ چلا کہ شیطان ایک وجہ ہے، لیکن وہ سب سے پہلی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے، دنیا کی محبت، لو آف دنیا. ہم اس دنیا کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ بل تو سے روت نل حیات دنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو لیتے ہو. حالانکہ آپ دیکھیے کہ دنیا کی محبت بھی اچھی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 12-13 کے اندر یہ بات آتی ہے कि हमने तो तुम्हारे दिलों में खुद मोहब्बतें डाली। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों से प्यार ना हो तो क्या आप दिन में ज्यादा वक्त किचन में गुजारें? ये अब एक के लिए नाश्ता बन रहा है, एक के लिए खाना बन रहा है, और अगर बाप के दिल में अल्लाह प्यार ना डाल दे अपने बच्चों का, बीवी का, तो क्या वो गर्मी की दोपहरों में जाकर मेहनत से कमा कर लाएं? दुनिया का निजाम ही ना चले अगर अल्लाह ने मोहब्बतें ना डाली हो, मना नहीं है। अच्छा, लेकिन मना क्या है कि कुल औ नब्बियुकुम बिखैरि मिन ज़ालिक, उसी से अगली आयत है, मैं तुम्हें इससे अच्छा ना दिखाऊं। तो कहने का मतलब यह है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, ठीक है। फिर इसी तरह एक और वजह होती है कामयाबी के अंदर, एक रेड लाइट हमारी क्या है कि आखिरत और मकसद हयात से ना वाकफियत है। हमें ये पता ही नहीं होता कि हम आए क्यों, और ये बहुत बड़े ट्रॉमे की बात है। आप यहाँ से किचन में जाएं और आपको याद ही ना आए कि मैं गई क्यों। कभी ऐसा हुआ किचन के पास जाके एक फ्रिज खोल के लोग खड़े होते हैं, हाय क्या लेना था, फिर वापस आए देखे फिर याद आ जाएगा, नमाज शुरू करें फिर याद आएगा, भूली बिसरी बातें आती है ना। तो बहुत सारे लोग दुनिया से जाने के करीब है बल्कि चले गए, उनको ये पता ही नहीं कि हम आए क्यों थे। कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो इस वक्त मौजू नहीं है। इस पे हमने जब दौरे कुरान 2020 किया था तो आखिरी तीन दिन जो थे 28, 29 और 30, उन तीन दिनों में हमने यही सारी चीज़ें समझी थी। हम कोरोना वायरस को बहुत बड़ा फितना कहते हैं, हम लॉकडाउन को बहुत बड़ी सजा कहते हैं, इससे भी बड़ी सजा और इससे भी बड़ा फितना यह कि हमें दुनिया में आने का मकसद नहीं पता, हमें बींग अ मुस्लिम अपने रवैये का रूप का पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुरान और सुन्नत से दूरी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि जिसको कुरान सुन्नत नहीं पता, गोया कैसे जिसको सिलेबस ही नहीं पता, तो उस बच्चे ने पढ़ना क्या और इम्तिहान क्या देने हैं, तो कामयाब आप नहीं होंगे। फिर इसी तरह एक और बहुत बड़ी वजह बीइंग अ मुस्लिम हमारे कामयाबी के रास्ते की, वो क्या कि दीन की जो असल है, असूल दीन और शरीयत से बैर है हमें, हमें खुद इस्लाम की बातें अच्छी नहीं लगती, गैरों को क्या लगे। हम कहते हैं इक्वलिटी और ये वो, और जैसे आप कहते हैं शरीयत को नाफिज करो, वो दूसरे तो नहीं रोकते, हम तो खुद नहीं करना चाहते। तो और ये कब होता है, जब हमारे पास इल्म नहीं होता, कुरान और सुन्नत के इल्म से है। फिर इस तरह देखिए एक रेड लाइट हमारी सुस्ती है, काहली है, और एक बहुत बड़ी चीज़ बेतरतीब भी, आगे जाके इस पर थोड़ी बात करूंगी, क्योंकि पहले सोच बेतरतीब होती है फिर हमारी ज़िंदगी पूरी बेतरतीब हो जाती है। फिर इस तरह देखिए बसीरत और फहम की कमी है, और एक बात और ले लीजिए कि वक्त ज़ाया करने की आदत। हमने कितनी रेड लाइट्स देखी हैं अपनी कामयाबी के रास्ते की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 लगा लीजिए रफली स्पीकिंग, और अभी इसमें मैं 10 और भी लिख सकती थी, लेकिन आपको सोचने का एक अंदाज़ देना मकसूद था कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं दुनिया में भी आखिरत में भी, लेकिन अमूमन हमारे रास्ते के ये सिग्नल जो हमें कामयाब होने नहीं देते वो ये होते हैं। अब एक सवाल लिखिए, मुझे कैसे पता चले कि मैं कामयाब हूँ कि नाकाम हूँ, एम आई अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट, वो भी आपके लिए लिख दिए हैं। नाकाम इंसान के रवैये क्या हैं, इफ़ आई एम अनसक्सेसफुल तो क्या क्राइटेरियन है। देखिए ना दुनिया में हर चीज़ को चेक करते हैं ना, टेस्ट होते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ठीक है, ये गलत है, गवर्नमेंट के पेपर्स हैं और बहुत कुछ चीज़ों में आपको पता ही है कि चेकिंग कैसे होती है। आप अपने आप को खुद मार्क्स दें। नंबर एक देखिए कि अगर किसी ने ईमान ही नहीं लिया, अल्लाह पे ईमान नहीं लाया, बींग अ ह्यूमन देखिए कि वो कुफर में है, शिर्क में है, या मुसलमान है लेकिन बिदत में, इस्लाम है और दूसरों पे नजरें हैं। अब आप इसको देख लीजिए और अपने मुल्कों की हालात देखिए, जो कब्रों पे जो कुछ शिर्क होता है, जो शख्सियत परस्ती के नाम पे शिर्क होता है, आप क्या कहेंगे कि ये कामयाब लोग हैं? क्यामत के दिन तो एक बहुत बड़ी एक जवाबदही होगी। फिर इस तरह अगर आप दुनिया में किसी पे जुल्म कर रहे हैं, बिलीव भी अगर आप सास हैं तो भी, और अगर आप बहू हैं तो भी, आप शौहर होने की वजह से डोमिनेंट हैं तो आप बीवी पे जुल्म करते हैं, या अगर आप बीवी हैं और अपने बेचारे सीधे साधे मर्द को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये नाकाम है आप। हमारा दुनिया की नज़रों में कामयाबी का मियार बिल्कुल डिफरेंट है और अल्लाह ताला की नज़रों में बिल्कुल फ़र्क है। फिर इस तरह देखिए अल्लाह की नाफरमानी और बगावत का हर काम ये बोल बोल के बता रहा है कि हम कामयाब नहीं हैं। अब आपको बिल्कुल एक डिफरेंट डेफिनेशन मिल रही है इस वक्त। हमारी दुनिया में कामयाब किसको कहते हैं? पैसा, फेम, शोहरत, गाड़ी, किसी की शादी हो जाए और वो अरबपति करोड़पति लोग हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि ये ऊपर जितनी चीज़ें हैं ये लड़के में हैं भी कि नहीं, हम कहते हैं बहुत कामयाब है। एक बच्ची की शादी होती है, करोड़ों में खेलती है और आहिस्ता आहिस्ता इतनी दुनिया में खो गई कि नमाजें छोड़ती है। पूछे ज़रा माँ से, सुनाइए क्या हाल है, बेटी की शादी हुई थी, कहते बड़ी खुश है, बड़ी खुशकिस्मत है। अच्छा, कुछ अरसे बाद आप उस बच्ची को मिले, उसका हाल हुलिया बदल चुका, नमाजें छूट गईं और दुनियादारी इतनी है। आप कहते हैं क्या? वो कहते कोई बात नहीं ना, खुश बड़ी है, नमाज बड़ा अच्छा है, ख्याल बड़ा रखता है। आपका मियार वो है। इसके बरक्स आप देखिए कि ऑपोजिट पे आ जाइए। अगर हमारे पास कोई ऐसा मामला आ जाता है कि जिसमें दीन तो पुख्ता हो जाता है, दुनिया में कोई चोट लग जाए, हम उसको नाकाम कहते हैं, घर टूटते हैं। आप कहते नाकाम हो गई बच्ची, शादी नाकाम हो गई, फेल हो गए, लेकिन उस शादी के टूटने में घर तो टूटा लेकिन अल्लाह से ताल्लुक पड़ गया। तो वो कह लीजिए ना कि ग्लासेस का नंबर चेंज हो गया। तो क्या पता चला कि ये सारे काम अल्लाह की नाफरमानी हो, बगावत हो, शरीयत की बजाय नफ्स को पूजना, शहवत परस्ती, लस्ट, हर वो चीज़ जिसके अंदर आप देखिए होमोसेक्सुअलिटी तक इंसान पहुंच गया, बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होने लग गईं। फिर आप देखिए कि इसी तरह किताब को पसे पुश डाल देना। अल्लाह ताला कहते हैं कुछ लोग हैं कि वो फिक्शन पकड़ लेंगे किताब हाथों में। अब आप कहेंगे वो कैसे होती है? माशाल्लाह कल्चरली हम कुरान की इज्जत तो बहुत करते हैं। मेरे अल्लाह इस टेबल पे रखा हो तो अगर गुजरना भी हो तो हम पीछा नहीं करेंगे, नीचे की बजाय ऊपर रख देंगे। कई जगह तो खोलते भी नहीं कि बेइज्जती ना हो जाए और हाथ नहीं पाक, वो नहीं। लेकिन अमली जिंदगी पे आप एक एक कदम पे रख कर देखिए, क्या वाकई ये किताब आज हमने पीछे नहीं डाली थी? ये इन 2-3 महीनों को छोड़ दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हालात बेहतर कर दिए और भी बेहतर हो रहे हैं अल्लाह की रहमत से, लेकिन क्या आज हम कदम कदम पे अल्लाह के हुक्मों को पसे पुश नहीं डालते? आज कोई एक ऐसे आर्टिकल पढ़ रही थी, किसी ने नाम लेके, अब तो नाम भी नहीं लेने को दिल करता क्योंकि कहानी इतनी लंबी और पुरानी हो जाए कि फिर वो अहमियत खोती है, कि कोरोना तुम्हारा शुक्रिया, तुमने वो कुछ सिखा दिया जो हमें नहीं था समझ आया हुआ। क्या अब शादियां भी इतनी सादगी से होने लग गई और फतीदगियां भी इतनी आसानी से होने लगी? वो रस्में भी गईं जो 4-4 महीने तक चलती रहती थी, और वो बरसियां भी गईं और वो कुछ गईं। यानी हम बहुत ज्यादा शुतर बेमुहार थे ना। वो ब्रांड कॉन्शियस भी गए और वो कपड़ों के लिए पीछे मरना और दर्जियों के फेरे गए ना, किसी हद तक तो कंट्रोल हुए ना। तो क्या हुआ कि किताब पीछे गई, अल्लाह ने उसको आगे करना सिखा दिया। फिर आप देखिए जिक्र से इरास बरतना, वमन अरादा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। आज ये जो घुटन है ना इंसानियत में, डिप्रेशन कहिए, एंग्जाइटी कहिए, उसकी वजह ये है कि हम अल्लाह की किताब से पीछे हैं। कुरान पढ़ा जाता है हमें समझ ही नहीं आता, आयते पे आयते हैं। सूरह कहफ जुमे के दिन पढ़ी होगी, कितनी आयतों ने हमें रोका, कितनों पे हमने देखा। बस हम पढ़ते हैं, ब्राय पढ़ते हैं, और जिनको समझ आता है वो बहुत ही काबिल मुबारक है। फिर इस तरह देखिए शैतान के नक्शे कदम पर इंसान चलता है, लातत तभी खुतवात शैतान। यानी बड़े अच्छे लोगों के नक्शे कदमों पर चलना मुमकिन नहीं, आज के दौर में नहीं हो सकता, लेकिन शैतान के नक्शे कदम क्या है कि मुआशरे के ट्रेंड्स पे इंसान चलता है। फिर से देखिए कि सिर्फ दुनिया में खो जाना, कई ऐसे लोग हैं वो बेचारे इतने खोए हुए हैं कि जिसको मैं इंग्लिश कलर्स बोले ना इंडल्ज, तो शायद कोई बात समझा सकूं। एक होता है आपके थोड़े थोड़े पाँव मट्टी में, एक जगह कि आप गोडे गोडे मट्टी में फंसे हुए हैं, तो आज इस तरह दिखता है। फिर से देखिए दुनिया को दारुल अमल ना समझना, वक्त ज़ाया करना, आजमाइशों और कामयाबियों से ना सीखना, और इसी तरह सबीलुल गई पे चलना। यानी अब ये एक लंबी लिस्ट सिर्फ आपके सामने इसलिए रखी गई कि हम अपने आप को चेक करें। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम कामयाब नहीं है, तब तक हम कामयाब होने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जो कहता ही नहीं कि मैं फेल हुआ तो वो क्यों पढ़े, सीधी सी बात है ना। फिर इसके बाद आगे देखिए, अगर तो जब आपको ये चंद बातें समझ आ गईं तो आपके तो अंदर की आंख खुलती। यानी यहाँ बैठे बैठे मुझे तो फिक्र लग गई कि इसका मतलब कि मैं पूरी कामयाब नहीं हूँ, या मेरी बच्ची कामयाब नहीं है, या मेरी बहू कामयाब नहीं है। तो जब अंदर की आंख खुलेगी ना, तब हमारी दुनिया बदलेगी। ये जो सारा सेशन है ना, ये असल में मेरी और आपके अंदर की आंख खोलने के लिए। पहले हमें अपने आप को लाना है। हम मेयार ही नहीं समझ पा रहे तो हम कोशिश कैसे करेंगे? और याद रखें कि जिंदगी में रुकावटें पैदा करने वाले लोग हमारे लिए आजमाइश हैं। एक बच्चा क्या मिलता है? माँ नमाजें छोड़ देती है, वक्त ही नहीं मिलता। अगर तहज्जुद गुजारती तो हो सकता है फजर भी ना पड़े कि सारी रात में बच्चे के साथ जागती रहती है, मैं क्या करूँ, आजमाइश आ गई ना। फिर इस तरह से आप देखिए कि कभी कभी मुसीबत और परेशानियाँ आती हैं। और याद रखिए बड़ी से बड़ी परेशानी एक दिन चली जाती है। आप जिस दिन अपनी सोच को सीधा करते हैं, ये अल्लाह सुभान अल्लाह ना हमें रोकता है। हजरत यूनुस अलैहि सलाम मछली के पेट में डाले गए, तो क्या वो हालात अच्छे थे ज्यादा या हमारे अच्छे? मछली का पेट जरा लाइए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। दुनिया में इससे बड़ा कोई लॉकडाउन नहीं हुआ होगा और इतना सख्त कोई नहीं हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें से निकाल दिया ना यूनुस को। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का लॉकडाउन वो आग थी जिसमें उनको डाला गया, तौहीद के नाम पे चली गई ना। तो कभी भी जिंदगी में आपके कोई आजमाइश आए, तो अपनी सोच परेशान ना करें। यानी ये भी हालात इस वक्त जो चलते हैं पूरी दुनिया में, कहीं कुछ, ये खबरें सुनने के नहीं होते। हर वक्त परेशान होकर लरसने ये वो है, तो अमूमन देखिए कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो हमारी आगे बढ़ने की रुकावट है। बहुत ज्यादा लोगों से बातें सुनना, खबरें सुनना, उसका तज्जिया क्या है क्या है। अब एक टसल चलती है, आप मिसाल अपनी अपनी एज लिखिए, किसी की 11 होगी, 12 होगी, को 20, 25, 50 का भी होगा। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, अगर मैं आज शुरू करूं तो क्या मैं ये जंग जीत सकती हूँ? कौन सी जंग? नाकामी को कामयाबी में बदलने की। हम कहते नहीं, आप क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए आपको खुद से फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से जीत गए ना, तो उसके बाद अगला दायरा आपका हालात का होता है, आपके इर्द गिर्द के लोग, हालात, मुआशरा, सोसाइटी, लोग, इन सारी चीजों में से गुजर गुजर के, छन छन के आपको एंड पे एक चीज समझ आ जाएगी, और वो क्या है कि आप अपना जायजा लें और अपने घर में बैठकर कागज कलम ले लें और लिखिए। जिस बंदे ने अपने अंदर के फियर एंड अपने अंदर की थॉट्स को लिख लिया, आधी से ज्यादा वहीं खत्म हो जाएंगी। आप एक फीडबैक किसी स्टूडेंट का मिला, मैं पढ़ रही थी, तो उन्होंने किसी लेक्चर में कहीं, मैंने कहा होगा ये बात कि आप बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तो आप कागज कलम लेके ना लिखिए। तो ये अभी भी मेरे फोन में ही होगा, अगर सुनना हो तो मैं आपको सुना दूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने वाकई अपना इलाज किया, और यकीन करें कि मैंने जो ही अपने दिमाग की सारी बातें कॉपी पे लिखी ना, तो उसके मुझे ऐसे लगा कि मैं हल्की हो गई। ये बात बहुत बड़ी बात है। हमें अपना जायजा लेना है, अपनी कमियों को देखिए, अपनी कोताहियों को देखें, आपके अंदेशे क्या है, हम खाप हॉल रहे हैं, फिर इसके मुकाबले पे देखिए कि आपकी बर्दाश्त कितनी है, अपने अंदर की स्किल्स को ढूंढें। तो यानी मैं इसको अगर एक नाम दे दूं कि कुछ वक्त खुद को तो दे। हम सब के बारे में बातें करेंगे, वो मामू की बेटी कैसी है, वो फूफो की बेटी के साथ क्या हो रहा है, वो चचा के घर क्या है, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। लिखिए आपके अंदर कुव्वते बर्दाश्त कितनी है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप अपने ईमान और अपने अमल को देखें। यानी ये एक ऐसी चीज होगी जिसमें आप अपने बारे में सोचें। मैं आज का दिन, टाइम, यानी 26 जून 2020, आज से लेकर आप 26 जुलाई तक एक महीना खुद को दें, क्या करें? मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। उसका तरीका थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सबसे पहले थिंक पॉजिटिव। आज से खुद को कहिए कि मैं अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखूंगी, मैं कोई अंदेशा नहीं लाऊंगी। देखिए अंदेशे क्या होते हैं, मैसे एक बेटा है, अल्लाह एक क्या 10 हैं, तो उनको भी सलामत रखे। एक बेटे के अंदर माँ की जान होती है, इसको कुछ हो ना जाए, ये चल ना जाए, ये ना हो, वो ना हो, और अल्लाह ताला सबको आजमाइशों से बचाए। एक बेटे पे आजमाइश आती बहुत है। अभी चंद दिन पहले किसी ने बताया कि इतनी बेटियों का एक ही भाई था, बहुत हो गया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसे सदमे क्यों पड़ते हैं, शायद ये कि दिल में उस बच्चे को रखा होता है जो अल्लाह के रहने की जगह। तो आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आप उसको भी तो निकालेंगे। तो आज से आप एक काम कीजिए, आप कुछ भी बनना चाहती, मिसाल दे देती हूँ, अभी शुरू में तो बात इत्मीनान सुकून की है, शायद उसको आप डिस्कवर ना कर सकें। मिसाल देती हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं कुरान पाक को समझूं और समझ के पढ़ूं। मैं हाफिज की बात नहीं करती इस वक्त, क्योंकि वो हमारे जहनों में है कि हम इस उम्र में कहाँ करेंगे। लिख लेती, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ सूरत फातिहा, अलिफ लाम मीम, सूरत अल बकरा, और इसी तरह से एंड तक सूरत नास तक चलते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप अरबी पढ़ें और आपको उर्दू समझ आए? आप कहेंगे ये तो बड़ा नामुमकिन है, तो मैं कहूँगी चलिए आज से सोचिए। आप अपने आप को कहें कि नहीं, मैं सूरत फातिहा पढ़ रही हूँ, मुझे समझ आ रही है। ज़रा कुछ एफर्ट करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या, बल्कि दुनिया में अक्सर ही जगहों पे बीज डालने के होते हैं। रमज़ान के बाद अमूमन नए कोर्सेज शुरू होते हैं, नई क्लासेस होती हैं, और हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन किताब है, और वो कुरान पाक है, जिसको आप कह सकते हैं कि नुस्खा कीमिया। ये मट्टी को सोना बनाने वाली किताब थी। आज हम बच्चों को ले लीजिए, कितनी किताबें पढ़ पढ़ा दी, लेकिन हमें कुरान का पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अब आप आज से सोचते हैं कि मैंने इस कुरान को सीखना है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं भी आपको मशवरा दे दूंगी। सबीलुल जन्नत एक कोर्स है कि जिसमें आपको इतने गैर महसूस तरीके से कुरान पाक का पढ़ना, फिर उसका तर्जमा, फिर उसकी तफसीर, फिर उस पर गौर व फिक्र, अमल की बातें सिखाई जाती हैं। कि आजकल दिल इसलिए बड़ा खुश है कि हर दिन किसी क्लास में जाकर थोड़ी सी बात करनी होती है, और प्लस ये के बाद में फीडबैक आता है, और जो वो लोग रोते हैं और मैं कहती हूँ इनको हंसती हूँ दिल में, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के ही इतनी खुश हो गई हैं, ये सिर्फ पहला लेसन पढ़ के इतनी खुश हो गई हैं। वजह क्या भला, क्योंकि उनको अभी नया नया मिल रहा है। हमें पता, मैं अक्सर कहती हूँ जरा सा आगे जाएं फिर देखें क्या होगा। ये इतना खूबसूरत रास्ता है और इतने आसान तरीके से समझ आ जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। कल से हमारे पास इंग्लिश का पहला कोर्स शुरू हो रहा है, यानी यंगस्टर्स के लिए, बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए। अल्लाह से मदद मांगते जाएंगे, अल्लाह रास्ते बनाता जाएगा। तो अगर आप अपने लिए सोचते हैं कि जी मैंने कुरान पढ़ना है, तो बाद में मेरे से पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करती हूँ। या कोई भी सोच है तो लिखिए एक जुमला कि जो आप सोचते हैं उसके बाद कीजिए। थिंकिंग प्लस डूइंग इज इक्वल टू रियलिटी। मैं आपसे बात करूँ, आप सोचें और उसके बाद आप कुछ एक्शन ना करें, तो ये ख्वाब ही रहेगा, ये हकीकत नहीं बनेगी। तो एक जुमला लिखिए कि हर कामयाबी की इब्तदा एक सोच से होती है। दुनिया की हर वो चीज़ जो आपके सामने आती है, वो पहले दिन किसी के दिमाग से शुरू होती है। लेकिन सर आइजक न्यूटन एक सेब को दरख्त से गिरता देखता है, तो उसके दिमाग में क्या सोच आई थी, आपको पता है, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि ये सेब जब दरख्त से अलग हुआ तो ये नीचे क्यों गिरा, ये हवा में ऊपर क्यों नहीं उछल गया। ये सोच उसके दिमाग में, उसने उस सोच पे अमल काम किया और ग्रेविटी को डिस्कवर कर लिया। बात समझ। अब आप कहते हैं हम नहीं मानते ग्रेविटी को, कोई नहीं होती, तो आप जाकर छत से छलांग लगा दीजिए नीचे, तो आपको लग पता चल जाएगा कि ग्रेविटी क्या होती है। सोच लाइए। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ थिंक फर्स्ट। हम सोचते नहीं है, हमने सोच लिया जो बनना था बन गए, जहाँ शादी होनी थी हो गई, जितना को अच्छा होना था हो गए, नेवर। फिर आप देखिए कि आप कहें कि मैंने अपने आप को चेंज भी करना है, बल्कि मैंने अपने वजूद के जरिए इर्द गिर्द तब्दीली लानी है। आज बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो हाई थिंकर हों, लोगों को इम्प्रेस कर सके, उनको साथ लें और एक तब्दीली की तरफ लेकर चले। और आप देखिए कि आप कहते हैं कि ज़ाहरी इनकलाब लाए कोई, कितने लोग हैं जो अपने मुल्कों में मौजज़ों का इंतज़ार नहीं कर रहे, कोई मसीहा आए और हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे, और कोई ऐसा आए और उमर फारूक जैसा दौरे खिलाफत आ जाए और हम पाकिस्तान को मदीना स्टेट बनाने का ख्वाब देख रहे हैं ना। ये काम कब होगा, जब आपके अंदर इनकलाब आएगा। मैं अपने पर लूँ, आप अपने पे लीजिए। यस आई एम दैट पर्सन, असल में मेरा इंतज़ार कर रही है दुनिया, मैंने चेंज लानी है। आप अंदर से जिस दिन उठेंगे ना, तो आपके अंदर एक ताकत आएगी। और याद रखिए, कुछ लोग तो एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो कुछ डीमोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं। आप अपने आप को देखिए, किन के पास बैठकर आपका दिल करता है बस मैं बूढ़ी पढ़ूंगी, मुझे पकड़ लो नहीं तो मैंने उड़ने लगना है। और कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं बैद ऐसे ही चाह पीने लिया, होर की नाल मिठाई नहीं है। हमारा आज मसला ये है, बह के खबरें सुनने हैं। कोई कोई ऐसा था जिसको पंजाबी नहीं आती, क्योंकि जो पंजाबी में बात करने का मजा आता है वो आमतौर पर नहीं आता। हम सोचते नहीं है कि हम बदलेंगे। नहीं जी पाकिस्तान नहीं बदल सकता, नहीं जी यहाँ से रिश्वत नहीं खत्म हो सकती, जी यहाँ की सड़कें नहीं खत्म हो सकती। आज बैठकर लिखिए यस इट्स पॉसिबल, और एक मैप बना लें। वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, तो उन्होंने एक मौके पे कहा कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कौन नहीं जाना चाहता हम में से। उसने कहा फिर बैठ के ड्रॉ करो, तो सबर में लाओ, तुम जन्नत में हो, तुम्हारा महल है, उधर मोती है, उधर ये। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप उसकी कोशिश नहीं करेंगे। आप अक्सर अपने बच्चों के साथ बैठिए घर में और सोचिए जन्नत में घर कैसा होगा, वहाँ क्या होगा। जिस दिन आपने अपने तस्वर में एक जन्नत बना ली, आप कोशिश करेंगे, चल पड़ेंगे। और याद रखिए कि हम मानते हैं कि बाहर की चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, यानी हम पाकिस्तान के हालात बाहर के नहीं बदल सकते, हम इर्द गिर्द इधर भी नहीं बदल सकते। आप अंदर तो तब्दीली ला सकते हैं। जब एक इंसान बदलता है ना, तो उसके साथ दुनिया पूरी चल पड़ती है। तो तब्दीली का सफ़र हमेशा अंदर से शुरू होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम जब बदलना चाहते हैं तो सोच को बदलना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि दुनिया में देखिए कि मैं सिर्फ फिगर्स इसलिए थोड़े थोड़े साथ शेयर करती हूँ कि हकीकत की बात हो। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, बरेसगीर पाको हिंद अलग हुआ ना, पाकिस्तान 1947, ठीक है। इंडिया एक अलग मुल्क बना और पाकिस्तान एक अलग बना, उससे पहले दोनों बरेसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों के थे अंडर। 47। और चाइना कब बना पता है आपको, आपसे एक साल छोटा है आपके मुल्क से अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, और इंडिया में तो भी वो 1948 में बना। आज जाकर देखिए कि चाइना ने अपनी मोहर दुनिया के हर कोने में पहुंचा दी, जहाज से लेकर सुई सिलाई और $1-2 $1-2 की चीज भी चाइना में बनती है। और उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन का प्रॉब्लम था, उसको अपनी ताकत बनाया। वजह क्या था, अंदर ये सोच थी कि हमने तरक्की करनी है। जापान में आज से शायद 10 साल पहले एक बहुत बड़ा जलजिला आया था, और कि उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई और उसमें से हमने लेसन्स और मॉरल्स लिए थे। उस जलजले ने जापानी लोगों की ज़िंदगी में कितनी बड़ी चेंज रखी। तो असल बात ये है कि हमें जो मुझे लगता है हमारा उर्दू कल्चर, जिसको उर्दू कल्चर या देसी कल्चर के, हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी सोचें। सोची पे आते बंदा गया, सोचें हमें दीमक की तरह खा रही हैं, बैठे हैं आप देखिए, ऐसे ही लगता है कि अल्लाह रहम करे कि जैसे किसी वो मौत के ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। बड़ी सोचे हैं, बच्चों का क्या होगा, है ये क्या होगा, आगे क्या होगा। हालांकि आप देखिए कि हम हालात का शिकवा करते हैं, हम कहते हैं हमारे मुल्कों में ये नहीं, हमारे इधर नहीं, हम अमेरिका में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम है, हम यूके में तो ये प्रॉब्लम है, नॉर्वे में, कहते हैं ना। हालांकि आप अगर दुनिया को देखें ना, तो 95% इजादात, इन्वेंशन जो दुनिया में हुई ना, वो किसी सख्त हालात का नतीजा थी। इसी तरह कहते हैं कि 75% काम दुनिया में जो बड़े बड़े हुए हैं ना, मतलब मिसाल है कि डिस्कवरीज हुई, वैक्सीन नजात हुई, और इसी तरह से बिजली बनी, एडिसन ने बिजली डिस्कवर की, ये सब किसी मुश्किल में लोग पड़े। पढ़ा होगा कि ये फफूंदी के ऊपर काम जो किया तो उसमें से वैक्सीन निकल आई थी। आप लिखिए ये जो हालात है इस वक्त दुनिया के, या जिसमें लोग बहुत अपने आप को ट्रबल में, इसमें से कोई बहुत बड़ी खैर चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त एक है, वो जिसको शायर ने कहा कि जो यकीन की राह पे चल पड़े, इन्हें मंजिलों ने बना दी, जिन्हें वसवसों ने डराया, वो कदम कदम पर बह गए। हमारा मसला यह है, हिम्मतें तोड़ने वाले बहुत हैं, हमारी टांगे खींचने वाले बहुत हैं। हम कहते हैं नहीं, कोई कहता है चुप करके बैठ जाओ, डराने वाले बहुत हैं, खौफ देने वाले बहुत हैं, उम्मीद तो कम है। देखिए आप कुछ नहीं कर रहे, ना कीजिए, आपको कौन मजबूर करता। आप जरा किसी से अपना कोई आइडिया तो शेयर करें, फिर देखिए आप खुद भी झुक जाएंगे। तो याद रखिए एक जुमला, गैर मुफीद सोचें इंसान को थका देती है। आज से ना आप फिल्टर करें, घर में फिल्ट्रेशन प्लांट तो होगा माशाल्लाह, पानी भी फिल्टर आप करते हैं, और क्या क्या फिल्टर होता है, फैंस भी होते हैं, एसी भी, और बड़ी चीजों के फिल्टर। आज से अपनी सोचों में एक फिल्टर लगाएं, यहां बैठे कहें मैंने कोई गलत सोच नहीं लानी, मैंने नेगेटिविटी नहीं लानी, मैंने महरूमी नहीं लानी अपने अंदर, कोई एहसास से कमतरी नहीं लानी। हर वो सोच छोड़ दीजिए जिसका कोई नतीजा ही कोई नहीं, ये हो गया वो होगा। अच्छा फिर ये ना हो, मतलब आप देखिए कि मौजूदा जो हालात दुनिया के है, हाय उसको ना वायरस हो जाए, हाय वो मर ना जाए, हाय उसको खौफ ना हो। याद रखिए जितना आप सोचेंगे ना उतना बढ़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बीज है ना, तो आप उस पर पानी डालेंगे ना तो वो पौधे में बदलेगा। सोच के अंदर जो सोच आती है ना, उसको फौरन क्या उस बिल्ला में शैतान बिल्ला, कोई ताकत ही नहीं अल्लाह के सिवा। आपको कोई नेगेटिव सोच आए, फौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ेंगे ना, गोया कि आपने अपने आप को पीछे करके अल्लाह को बीच में रखा। अल्लाह भी देखता है कि बंदा तो खुद ही कह रहा है अल्लाह मैं नहीं कर सकता तो क्या होगा। किसी के बारे में बुरी सोच ना रखें आज से अपनी जिंदगी। मतलब हमारे घरों में 6 से 7 लोग तो अमूमन होते ही है ना, मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे होंगे, घर में एक आधा बुजुर्ग होता है, और अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो 10-12 लोग होंगे। आज से यहाँ ये बात लेके उठना मैंने आपने, कि मैंने अपने इर्द गिर्द किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। आप काम करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, आप दीन का काम करते हैं, मैंने किसी दूसरे साथी के बारे में नेगेटिव नहीं होना। चाहे मुझे 10 दफा दिन में उससे इख्तलाफ राय हो, मैं 10 मैसेज करूँ वो मुझे जवाब ना दे, मैंने जो काम नहीं करना मुझे वही काम ऑफर हो रहा है, और जो मैं मांग रही हूँ मुझे नहीं दे रहा, लेकिन आज खुद से कहिए कि मैंने इसके बावजूद भी किसी बंदे से बदगुमान नहीं होना। यकीन करें अगर आज आपने इसके ऊपर अमल शुरू किया ना, कल तक आपकी जिंदगी के 50% गम दूर हो गए होंगे। इसी को पॉजिटिव थिंकर कहते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि देखो मेरे सामने किसी की बुराई ना किया करो, मेरे पास जब कोई आए ना तो मैं उसको बड़े अच्छे दिल से मिलना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह के नबी बैठे थे, कुछ साथी थे, तो दूर से एक आदमी आ रहा था, तो साहबा का किसी का कोई तजुर्बा ऐसा हुआ होगा उनके साथ, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी ये ऐसा आदमी है, ये बड़ा बुरा है, जैसे माशाल्लाह हम भी करते ही है ना। कैसी बात किया, वो आया बैठा बैठ के जो भी हुआ, अल्लाह के नबी ने उनसे बड़ी अच्छी बात की, वो चला गया। तो बाद में आपने कहा कि देखो तुमने मुझे उसके बारे में नेगेटिव बातें की थी ना, तो मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, तो आइंदा मेरे सामने किसी की बुरी ना बात किया करो, मैं खुले दिल से मिलना चाहता हूँ। अपने ऊपर लीजिए, शोहर बीवी का झगड़ा कितना मशहूर, कितना पुराना, जितनी दुनिया पुरानी, मुझे नहीं पता अम्मा हवा और बाबा आदम लड़ते थे कि नहीं, लेकिन हमने तो झगड़ते ही देखा है, और मोहब्बत तो शादी से पहले ही काफी थी, बाद में तो वो खत्म ही हो गई। कहिए आज से मैंने अपने शोहर की किसी बात के जवाब में उनके बारे में बुरा नहीं सोचना। आप कहें मैं नहीं रहती, मेरे से नहीं होता ये काम, कंधे ही हल्के हो जाने हैं। फिर इसी तरह से मिसाल है कि और कौन सा रिश्ता बड़ा प्यारा होता है लड़ने के एतबार से, सास बहू। मैंने अपनी सास के बारे में बुरा नहीं सोचना, और देखिए रीजनिंग करें, इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला फरमाते हैं कि जब तुम अपने किसी भाई के साथ मामला करो तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि वो गलत कह रहा है, जो कह रहा है वो ठीक नहीं, फिर तुम उसकी एक वजह ढूंढो, दो ढूंढो, उसकी 99 वजूहार ढूंढो कि वो इसलिए, जैसे अम्मी जी इसलिए गुस्सा कर रही हैं कि बीमार हैं, अम्मी जी की शुगर बढ़ी हुई है जी, अम्मी जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है जी, अम्मी जी रात को जागती रही, अम्मी जी के पास अब्बा जी नहीं है इसलिए परेशान है, अम्मी जी थक गई हैं, आप 99 ढूंढ के आखिरी पता क्या कहे, मैं उस वजह को पा ही नहीं पा रही जो बेचारी अम्मी जी की है। यकीन करें वो अम्मी जी की बात पे गुस्सा तो कम माना है, आपको वो बेचारी लगने ही लगेंगी, अम्मी जी इतनी दवाइयां खाती हैं, अम्मी जी की जिंदगी में अब कशिश नहीं रही, अम्मी जी मोटी हो गई हैं, अम्मी जी, यानी देखिए ना एक जवान बहू की जिंदगी में एक अट्रैक्शन है, एक नयापन है, उसके मुकाबले में एक औरत जो सारी जिंदगी उस घर के अंदर रही, वो तिनका तिनका जोड़ा, तो वो फर्क हो जाती है ना कैफियत। तो आप बताइए अगर आप इस तरह सोचने लग जाएं तो क्या आपकी नफरतें मोहब्बतों में ना बदल जाएं? यही काम हर एक से करें। आप मिसाल है कि अगर आप कहीं काम करते हैं दीन पे, या आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं मर्द, हर वक्त कदम कदम पे नहीं, चपरासी से लेके अफसर तक, वो कहते ना हर बड़ी मछली छोटी को खाती है, बड़ा अफसर छोटे को डांटता है, ऊपर से डांट खा के आता है, अंदर आके छोटे को डांटता है, वो ऊपर से जाता है, वो अखीर क्लर्क है, वो बेचारा गेट में वो जाकर ठुड्डा ही मार देता है दीवार को, क्या मैं किसको डांटू, मेरे से तो नीचे ही कोई नहीं। आप एक ख्वाब तो देखे, आज के बाद मैंने अपनी सोच को आवारा नहीं होने देना, यानी ये जो आज मैं आपको देने आई हूँ ना, ये मैं सोच देने आई हूँ, नामुमकिन है तो फिर नामुमकिन ही है, लिख लें इट्स नॉट पॉसिबल, तो क्योंकि आपने सोच लिया ये नहीं पॉसिबल। आप कहे, वो कहते हैं ना कि मंजिलें रास्ता देती हैं उनको, तेज गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी उसके आगे रुकेगी? वो कहेंगे पीछे उसे जाने तो ये तो हमें मार देगा। आप कहते नहीं मैंने तो तेज जाना ही नहीं, तो सारे आपसे पीछे से रास्ता लेकर काट के आपको आगे जाएंगे। तो अपनी सोच से अपने आप को कंट्रोल करें, हर बंदे के बारे में जो आपको अच्छा नहीं लगता, हर वो चीज जो आपको लगती है कि ये आपकी जिंदगी की रुकावट है।